We greet each and every one of you seated before your television waiting for this program.
Program ka intezar karne wale aap sabhi darshakon ko Yeshu ke naam mein abhivadan.
We thank God for this opportunity to come into your homes and to sit with you and discuss the most important topic in the Bible, that is the second coming.
Hum parmeshwar ka dhanyawad karte hain sadbhut mauke ke liye ki hum aapke paas mein aa sake aapke saath mein baithkar Bible ke sabse mahatvapurna vishay yani dusre aagman par hum charcha kar rahe hain.
It is an exciting, interesting and a fascinating subject, I must say.
Aur main yahi kahungi ki ye bahut hi utsahit aur bahut hi protsahit karne wala aisa chaukane wala vishay hai.
Today, when we read the newspaper or watch the television, even through social media and internet, we are shocking and unexpected events taking place.
और अगर आज हम अखबार पढ़ते हैं या टेलीविजन में खबरें देखते हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी अगर हम देखें, तो होने वाली सारी घटनाओं को देखकर हम पूरी तरह से चौंक जाती हैं।
We have heard such absurd incidents taking place. In a few years, we will see what things are going to take place.
और निश्चित जैसे कि आज इन सारी घटनाओं को होते हुए हम देखते हैं, तो हम यही कल्पना करते हैं कि आने वाले कुछ साल में क्या-क्या घटित होने वाला है।
It seems every day is deteriorating and will never improve.
ऐसे दिखाई देता है कि हर एक दिन बस अधोगति की ओर जा रहा है, घटते जा रहा है, और कभी कोई उन्नति नहीं आएगी।
As I told you in the last episode, just by a press of a button.
और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि बस एक बटन दबाते ही,
the whole country will be devastated by flames.
पूरा जो देश है, वो तो बस आग से पूरी तरह से नाश कर दिया जाएगा।
Every day the technology is developing.
हर एक दिन इस तरह की जो तकनीक है वो तो बढ़ती ही चली जा रही है.
And it is used for destructive purposes.
और इसका उपयोग केवल विनाश के उद्देश्य के लिए ही किया जा रहा है.
The second coming is also very, very important, I must say.
और मैं यही कहूंगी कि जो दूसरा आगमन है ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है.
Because it will come at a time.
क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसे समय पर आएगा.
It will come at a time when the whole world is in a confusion and complete chaos.
क्योंकि ये तो ऐसे समय में आएगा या ऐसे समय में होगा जब पूरा संसार पूरी तरह से गड़बड़ी में होगा, पूरी तरह से गड़बड़ी में होगा.
Let us look at the events that are taking place in our time.
आइए देखते हैं कि हमारे समय में कौन सी घटनाएं हो रही हैं.
And we see what is happening today.
और आज हम देखते हैं कि क्या-क्या हो रहा है.
Like increased violence and terror.
जैसे कि आक्रामकता या कहिए कि हिंसा जो है और आतंक जो है वो तो बहुत ही बढ़ गया है.
Therefore, our heartbeat says the second coming is very imminent.
और इसलिए हमारे दिल की जो धड़कन है वो इस तरह से कहती है कि दूसरा आगमन बहुत ही निकट है.
We have heard in World War One and in Two were mass movements of tanks and soldiers.
और हमने इस तरह से सुना कि पहले विश्व युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध में बहुत बड़ी सेना थी, बहुत से सिपाही थे और वहाँ पर बहुत से टैंक्स थे, ऐसे बहुत से हथियार थे.
And also airplanes were extensively used.
और उस समय में हवाई जहाज का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया था.
But If there is a war today,
लेकिन अगर आज कोई युद्ध हो जाता है,
we pray that this should not happen.
हमारी तो बस यही प्रार्थना है कि इस तरह का कोई भी युद्ध ना हो.
But if it does,
लेकिन अगर अभी कोई युद्ध हो,
it will be nothing but a nuclear war.
तो ये युद्ध और कुछ भी नहीं, केवल न्यूक्लियर युद्ध ही होगा.
Which will result in great destruction.
जो कि बहुत बड़े विनाश में इसका परिणाम देखेंगे.
Only the ashes will be behind as a proof of war.
और युद्ध के सबूत के रूप में केवल राख ही होगी, सब कुछ राख हो जाएगा.
Jesus Christ 2000 years back told us a simple parable of the fig tree.
और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ के बारे में बहुत ही सरल दृष्टांत बताया.
When it blossoms, we know summer is near.
और जबकि वो फलवंत होता है तो हम जानते हैं कि ग्रीष्मकाल या गर्मियां भी पास में हैं.
So also as Jesus predicted.
और उसी तरह से यीशु ने भी इस बात का अनुमान लगाया.
As the Bible declares.
जैसे कि बाइबल इसे घोषित करती है.
Wars, earthquakes and pestilence are happening and warning us all that the end is soon.
युद्ध, मरी, भूकंप और ये ऐसी बहुत सी बातें जो हो रही हैं, ये हमें चेतावनी देती है कि अंत बिल्कुल निकट आ पहुंचा है.
And Jesus is definitely coming back soon.
और निश्चय ही यीशु बहुत ही जल्दी वापस आ रहा है.
What makes me astonishing is that all these events will happen like a fraction of a second.
और इस बात से मैं चौंक जाती हूँ कि ये जो सारी घटनाएं हैं, बस ये पल भर में ही, ये बहुत ही जल्दी होती चली जाएगी.
Remember, Jesus said in Matthew 24:27.
याद है यीशु ने मत्ती अध्याय 24 वचन 27 में इस तरह से कहा है.
For as the lightning cometh out of the east.
क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर
and even shineth unto the west.
पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है.
So shall the son of man coming be.
वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा.
So unlike the first coming where prophecy was fulfilled after 1,000 years.
यानी ये तो पहले आने के जैसे नहीं, पहले आगमन के जैसे नहीं, जहां पर भविष्यवाणी 1,000 साल के बाद में पूरी हुई थी.
After the second coming was foretold.
जबकि देखा जाए तो दूसरे आगमन के बारे में पहले से बताया गया है.
It says it will happen in the twinkling of an eye.
ये बताया गया है कि ये तो बस पलक झपकते ही होने वाली घटना है.
Now we come to our day.
और अभी हम हमारे दिनों में आते हैं.
Many of us are wondering and questioning why Jesus did not give us the exact time of his coming.
हम में से बहुत से लोग यही सवाल पूछते हैं कि यीशु ने अपने आगमन के बारे में जो सही समय है सटीकता से क्यों नहीं बताया.
Probably if you read the Old Testament.
अगर आप पुराने नियम को पढ़ते हैं.
Enough warning was given to man to live a righteous life.
वहाँ पुराने नियम में मनुष्य को काफी चेतावनियाँ दे दी गई थी कि वो धार्मिकता का जीवन जीते जाएं.
But he did not listen.
लेकिन फिर भी उसने कोई बात नहीं सुनी.
Or understand the first coming of the Messiah.
और ना ही वो मसीहा के पहले आगमन के बारे में उन सारी चेतावनियों से कुछ सीख पाए.
Moses in the Old Testament got the Ten Commandments directly from God.
पुराने नियम में मूसा ने 10 आज्ञाओं को सीधा परमेश्वर से प्राप्त किया था.
The Bible also records that God wrote these commandments with his own fingers.
और बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर ने ये सारी आज्ञाओं को अपनी ही उंगलियों से लिखा था.
But when Moses gave it to them, they did not listen.
लेकिन जब मूसा ने ये आज्ञा उन्हें दी तो उन्होंने इसे नहीं माना.
Finally, Jesus Christ himself came into the world.
और फिर अंत में स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया.
To tell the people to lead a simple, a righteous and a holy life.
कि लोगों को ये बताए कि वो बहुत ही सरल धार्मिकता का और सच में पवित्र जीवन जीते चले जाएं.
The Old Testament Mosaic laws were hard, but Jesus Christ simplified it.
पुराने नियम में मूसा की जो व्यवस्था थी वो तो बहुत ही कठिन थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी व्यवस्थाओं को बहुत ही सरल किया.
And he told it to them in parables.
और दृष्टांतों में उन्हें ये सारी बातें समझाकर बताई.
So that the people could easily understand.
इसीलिए कि लोग जो है इन सारी बातों को आसानी से समझ सके.
But they rejected him and crucified him.
लेकिन लोगों ने प्रभु यीशु का इनकार किया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया.
Now 2,000 years have elapsed.
लेकिन अभी 2,000 साल बीत गए हैं.
And still people have not turned from sin to follow a simple and a righteous life.
लेकिन अभी भी लोग पापों से हटकर बहुत ही सरल और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए नहीं मुड़े हैं.
So this time around,
यानी अभी इस समय के दौरान,
Jesus will come in great power and glory.
यीशु जो है वो तो बहुत ही महान सामर्थ और बहुत ही महान महिमा में आएगा.
To honor the righteous people.
कि धर्मी जन का वो आदर करते चले जाएं.
And remember also to punish the wicked ones.
और याद रखिए साथ साथ में दुष्टों को दंड देने के लिए भी वो आएगा.
Then Jesus compares and talks about just as a shepherd divides the sheep and the goat.
और फिर यीशु यहाँ पर इस बात की तुलना करता है जैसे कि एक चरवाहा भेड़ों और बकरियों के बीच में विभाजन करता है.
So also the son of man will divide the people in two groups.
और वो कहता है कि मनुष्य का पुत्र भी लोगों को इसी तरह से दो समूह में बांट लेगा.
That is the good and the bad.
यानी अच्छे और बुरे दोनों लोगों को बांट देगा.
Then he chooses the people on the right side and he tells them verses 35-36.
और फिर जो दाहिनी ओर है उन लोगों को वो चुनेगा और वचन 35 और वचन 36 में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि वो उन लोगों से कहेगा.
I was hungered and you gave me meat.
वो उनसे कहेगा जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे भोजन दिया.
I was thirsty and you gave me drink.
और जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पिलाया.
I was naked and you took me in.
और जब मैं विवस्त्र था तब तुमने मेरी देखभाल की, मुझे वस्त्र पहनाए।
एंड यू क्लोथ मी,
तुमने मुझे वस्त्र पहनाए।
आई वॉज सिक एंड यू विजिटेड मी,
मैं बीमार था उस समय तुम मुझसे मिलने के लिए आए।
I was in prison and he came to me.
मैं जेल में था और तुम मुझसे मिलने के लिए आए।
All these people were taken in complete surprise.
और ये सभी जो लोग थे वो तो ये बातें सुनकर पूरी तरह से चौंक गए।
And asked him, when did all these things happen?
और उन्होंने उससे पूछा कि ये जो सारी घटनाएं हैं ये कब हुई?
And Jesus answers them in verse 40.
और वचन 40 में यहाँ पर यीशु उन्हें उत्तर देता है।
He says,
वो ये कहता है,
Verily I say unto you,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ,
In so much as you have done it unto one of the least of these my brethren,
कि तुमने मेरे भाइयों में से छोटे के लिए जो भी किया हो उसके लिए,
You have done it unto me.
तो ये मानो ऐसा है कि तुमने ये मेरे साथ में किया हो।
I hope and pray this is very clear to all of us. Why Jesus Christ told this.
और निश्चय मैं आशा करती हूँ और मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब लोग इस बात को स्पष्ट जाने कि यीशु ने ये सब कुछ क्यों कहा।
Things in a straightforward manner, whatever we do for the poor, we do it for him.
और ये सारी बात बहुत ही स्पष्ट है कि जो कुछ भी हम कंगालों के लिए करते हैं ये तो हम प्रभु के लिए करते चले जाते हैं।
When we read that,
और जब हम इस बात को पढ़ते हैं,
Jesus looks at the other people and tells them a similar thing as they had done nothing.
और यीशु उन दूसरे लोगों की ओर देखकर कहता है और यही बात कहता है कि उन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया।
What did Jesus do?
यीशु ने यहाँ पर क्या किया?
He curses them and casts them out.
वो उन्हें वहाँ पर कोसता है और उन्हें अपने सामने से निकाल देता है।
Again in Matthew 25 Jesus tells a parable about the 10 virgins.
और यहाँ पर फिर से मत्ती अध्याय 25 में यीशु 10 कुंवारियों के बारे में ये जो दृष्टांत है इस दृष्टांत की कहानी उन्हें बताता है।
I'm sure you all remember the story very well.
और मैं जानती हूँ कि आप सभी को ये कहानी बहुत ही अच्छी तरह से याद होगी।
Now when the second coming we take particular note and see that all were prepared for the bridegroom but only 5 carried oil.
अब दूसरे आगमन में हम इस बात को खास करके देखते हैं कि जो सभी है सभी के सभी वहाँ पर दूल्हे के लिए तैयार थे लेकिन केवल 5 कुंवारियाँ अपने साथ तेल लेकर आई थी।
And the other 5 did not carry that extra oil.
और दूसरी जो 5 कुंवारी थी वो अपने साथ में अतिरिक्त तेल लेकर नहीं आई थी।
So what does the oil signify?
यानी ये जो तेल है किस बात को दर्शाता है?
It signifies the good deeds.
ये तो भले कामों को दर्शाता है।
We all know the story. That the 5 virgins with the oil entered with the bridegroom.
हम सब ये कहानी जानते हैं कि जो 5 कुंवारी जिनके पास में तेल था वो दूल्हे के साथ में वहाँ पर भीतर में प्रवेश कर लेती हैं।
Look what happened to the other 5.
लेकिन बाकी जो 5 हैं उनके साथ क्या होता है?
The door was shut on the remaining 5.
बाकी जो 5 थे उनके सामने द्वार बंद हो जाता है।
You know why?
जानते हैं क्यों?
Because they did not have oil.
क्योंकि उनके पास में तेल नहीं था।
Those without good deeds were thrown out.
जिनमें भले काम नहीं है उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा।
It is very clear here the message that without deeds there would be no entry into God's kingdom.
इस संदेश में ये बात तो बहुत ही स्पष्ट रीति से बता दी गई है कि भले कामों के बिना हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
We are reminded of what happened in the days of Noah.
हमें याद दिलाया जाता है कि नूह के समय में क्या हुआ था।
The door to the ark was shut.
जहाज का जो द्वार था वो तो बंद कर दिया गया था।
And then it rained continuously.
और फिर उसके बाद में निरंतर बारिश होती रही।
People requested to open the door, but nothing could be done.
लोगों ने विनती की कि नूह द्वार खोले लेकिन उस समय वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाया।
Imagine the same thing that's going to happen when Jesus Christ comes again.
कल्पना कीजिए कि जब यीशु मसीह आएगा तो बिल्कुल यही बात वहाँ पर फिर से दोहराई जाएगी।
Matthew 25:13 Jesus says.
मत्ती अध्याय 25 वचन 13 में यीशु ने इस तरह से कहा,
Watch therefore.
इसीलिए तुम सावधान रहो सचेत रहो।
For ye know neither the day nor the hour when the Son of Man cometh.
क्योंकि तुम नहीं जानते ना ही उस घड़ी को ना ही उस समय को कि मनुष्य का पुत्र कब आएगा।
Therefore it is important that we be prepared and keep doing good deeds and wait for his coming.
और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम बिल्कुल तैयार रहें भले कामों को करते चले जाएं उसके आगमन की हम राह देखते जाएं।
If we read Luke chapter 21:33,
अगर हम लूका अध्याय 21 वचन 33 पढ़ते हैं तो हम ये पाएंगे,
pens down what Jesus says.
यहाँ पर देखिए यीशु ने क्या कहा, इसे आप लिख लीजिए.
Heaven and earth will pass away.
आकाश और पृथ्वी टल जाएगी.
But my word shall not pass away.
लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा.
I just want to remind you that every word that Jesus said.
मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि यीशु ने कहा हुआ हर एक वचन.
Is so important and it will come to pass. So we have to give great attention to these passages.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो जरूर पूरा होगा और इसीलिए हमें इन वचनों की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, इसे सावधानी से देखना होगा.
These three gospels record that Christ himself told about his coming.
इन तीनों सुसमाचारों में यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में कहा गया है, ये सब लिखा है.
All signs and all things will happen as it's explained clearly by Jesus Christ himself.
यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से बताया, सारे चिन्ह बिल्कुल उसी तरह से पूरे होते चले जाएंगे.
Now we'll go to the historical facts.
अब चलिए हम ऐतिहासिक सच्चाइयों की ओर चलते हैं.
एंड दिस इज द एक्साइटिंग पार्ट.
और यही तो बहुत ही उत्साहजनक बात है.
इफ वी गो टू जेरुसलम टुडे,
अगर आज हम यरूशलेम में जाते हैं,
वी विल सी द ओल्ड सिटी सराउंडेड बाय अ वॉल एंड एट द टाइम ऑफ नेहेमिया दे वर 12 गेट्स बट नाउ देयर आर ओनली 8 मेजर गेट्स.
तो हम पाएंगे कि नेहेमिया के समय में वहां पर उस समय 12 फाटक हुआ करते थे, लेकिन आज केवल कुल मिलाकर 8 फाटक ही हैं, केवल 8 फाटक ही रह गए हैं.
And it was rebuilt by Sultan Suleiman.
और सुल्तान सुलेमान ने इन फाटकों को और इस शहरपनाह को फिर से बनाया था.
Moving counterclockwise from the northernmost gate.
अगर हम उत्तरी फाटक की ओर से पश्चिम की ओर आगे ऐसे बढ़ते चले जाएं,
the first gate is called the Herod Gate.
तो पहला फाटक जिसे हेरोदेस का फाटक कहते हैं.
Then the Damascus Gate.
और फिर उसके बाद में दमिश्क का फाटक आता है.
द न्यू गेट एंड जाफा गेट.
और फिर उसके बाद में नया फाटक और याफा का फाटक आता है.
द ज़ायन गेट एंड द डंग गेट.
और सियोन का फाटक और डम फाटक, इस तरह से यहाँ पर ये फाटक आती हैं.
द लायंस गेट.
और फिर सिंह का फाटक.
एंड वन मोर गेट एंड दैट इज कॉल्ड द ईस्टर्न गेट.
और एक और फाटक है जिसे पूर्वीय फाटक के रूप में कहा जाता है.
Which is very, very important.
और ये फाटक तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है.
The eastern gate of Jerusalem is also called the golden gate or the mercy gate.
यरूशलेम का ये जो पूर्वीय फाटक है, इसे सुनहरा फाटक या फिर दया का फाटक भी कहा जाता है.
And if you're reading the book of Acts very carefully, I'm sure this is the most exciting book in the Bible. You will see in Acts chapter 3:2, the same gate is called the beautiful gate.
आप यहाँ पर अगर प्रेरितों के काम की किताब पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 3:2 में यही फाटक है जिसे सुंदर फाटक भी कहा गया है.
The book of Ezekiel contains several references to the gate that faces the east.
और यहजकेल की किताब में ऐसे बहुत से वचन हैं जो पूर्वी फाटक के बारे में हमें यहाँ पर विस्तार से बताते हैं.
If we read Matthew chapter 21,
अगर आप मत्ती अध्याय 21 पढ़ते हैं तो आप इसमें यही बात पाएंगे.
Jesus in the last phase of his ministry on this earth,
यीशु ने अपनी पृथ्वी पर की जो सेवकाई थी उसके बिल्कुल आखिरी समय में,
he enters Jerusalem from the Mount of Olives through the same gate currently called the Eastern Gate.
यीशु जैतून के पहाड़ से यरूशलेम में प्रवेश करता है, वो इसी फाटक से प्रवेश करता है जिसे पूर्वीय फाटक कहा गया है.
Remember that this eastern gate is currently also called the golden gate.
याद रखिए, ये जो पूर्वीय फाटक है, इसे हाल में सुनहरा फाटक भी कहते हैं.
Jewish tradition states that in the second coming of the Messiah.
यहूदी परंपरा इस तरह से बताती है कि जब मसीहा दूसरी बार आएगा, जब मसीहा का दूसरा आगमन होगा,
he will pass through the eastern gate.
तो वो पूर्वी फाटक में से होकर ही आएगा.
As he comes to rule the earth.
जैसे वो इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आएगा, उस समय इस फाटक से आएगा.
Here I would like to remind you the history of the wall of Jerusalem.
यहाँ पर मैं आपको यरूशलेम की शहरपनाह के इतिहास के बारे में बता रही हूँ.
Please take note, this is the important part of this whole message.
आप इस बात की ओर गौर कीजिए क्योंकि ये तो इस संदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा भाग है.
The first temple was built by King Solomon in 950 BC.
ईसवी सन पूर्व 950 के दौरान पहला जो भवन है वो तो राजा सुलेमान ने बनाया था. इस बात की ओर आप गौर कीजिए.
King Nebuchadnezzar destroyed both the temple and the wall in 520 BC.
और ईस्वी सन पूर्व 520 में राजा नबुकदनेस्सर ने उस भवन को और साथ साथ में पूरी शहरपनाह को नाश कर दिया था।
If you're following in the Bible, it's very clearly stated there too.
अगर आप बाइबल में से देखते हैं तो ये बात यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप में है।
After 70 years, Ezra, Nehemiah and Zerubbabel built the second temple.
और 70 साल के बाद में एज्रा, नहेम्याह और जरुबाबेल ने इस दूसरे भवन को बनाया था।
And this is very important and also the wall.
और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ साथ में शहरपनाह जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।
The Roman emperor Titus burned the city and destroyed the walls of Jerusalem.
रोमी सम्राट टाइटस ने इस पूरे नगर को जला दिया था और उसने पूरी शहरपनाह और फाटक को पूरी तरह से जला दिया था, नाश कर दिया गया था।
There is no temple in this original place today because they have built a mosque in that same place.
और जहां पर अभी इस समय ये मॉस्क बनाई गई है।
Then in 1540 AD.
और फिर ईस्वी सन 1540 में हम इस बात को देखते हैं।
The Ottoman Emperor Sultan Suleiman built the present wall on the original destroyed wall of Jerusalem.
उस समय के सुल्तान सुलेमान ने पहली जो शहरपनाह यरूशलेम की थी, जिसे नाश कर दिया गया था, उसी के ऊपर में उसने ये वर्तमान की शहरपनाह बना दी।
If you remember, we just said that before a little while ago, and this wall was built, of course, by Ezra and Nehemiah.
और अभी कुछ समय पहले इसके बारे में हमने बताया, और ये शहरपनाह एज्रा और नहेम्याह के द्वारा बनाई गई।
He was informed about the entry of Jesus Christ.
उसे यीशु मसीह के इस प्रवेश के बारे में जानकारी दी गई थी, उसे बताया गया था।
Please take note that Jesus Christ will only come through the eastern gate.
आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह जो है वो तो केवल पूर्वीय फाटक में से ही आने वाला है।
And he is also told that he will re-enter through the same gate at the end of time.
और निश्चय जब समय खत्म होगा तो इस तरह से बताया गया कि वो इसी फाटक से भीतर में प्रवेश करेगा।
So in the year 1542 AD.
यानी ईस्वी सन 1542 के समय की ये बात है।
Emperor Suleiman sealed the eastern gate.
सम्राट जो सुलेमान था, उसने इस पूर्वीय फाटक को बंद कर दिया।
It is believed that he did this to prevent the second coming.
और ऐसे माना जाता है कि उसने ये सब कुछ इसीलिए किया कि वो किसी भी तरह से दूसरे आगमन को रोकना चाहता था।
And that Jesus Christ gaining entrance to the Jerusalem.
और यीशु मसीह को यहाँ पर यरूशलेम में आने से रोका जाए।
So he closed it with a wall of 3 feet thickness.
तो इसने 16 फीट चौड़ी ऐसी दीवार के द्वारा इसे बंद कर दिया।
You can imagine the thickness then.
आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो चौड़ाई है, ये सच में कितनी मोटी होगी।
You can imagine how strongly he would have secured the gate.
आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि उसने इस फाटक को किस तरह से सुरक्षित रखा होगा।
The eastern gate has remained sealed for the last 500 years.
और पिछले 500 साल से ये जो पूर्वीय फाटक है, ये तो अब तक ऐसे ही बंद पड़ा है।
Can you imagine that?
क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं?
This gate stands as a great reminder to all of us for the second coming of Jesus Christ.
और ये जो फाटक है, निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में हम सबको याद दिलाता है।
When Christ shall come,
जब यीशु मसीह वापस आएगा,
this wall that closes the gate will be shattered in a flash to dust.
ये जो दीवार जिसने इस फाटक को बंद करके रखा है, ये बस पल भर में ही ऐसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
This is a symbolic representation to the second coming of Jesus Christ.
और ये तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में दर्शाने वाली ऐसी बात है।
Remember, unimaginable things are going to take place on the earth in the coming days.
याद रखिए, आने वाले दिनों में ऐसी ऐसी घटनाएं होगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
Preceding Christ's return.
और फिर उसके बाद में मसीह यीशु का दूसरा आगमन होगा।
So I want you to go through the Gospels of Matthew, Mark and Luke and prepare yourselves.
और मैं चाहती हूँ कि आप मत्ती, मरकुस, लूका के सुसमाचार में से होकर जाएं और अपने आप को इस दूसरे आगमन के लिए तैयार कर लें।
Many terrible things which have never happened before will happen now.
बहुत सी ऐसी भयानक बातें हैं जो अब तक कभी नहीं हुई, वो अभी होगी।
Destruction will happen so quickly.
और विनाश तो इतनी जल्दी होने वाला है।
And it will take all the people by surprise.
और सभी लोग इस बात को देखकर पूरी तरह से चौंक जाएंगे।
I want to tell you all these things that are going to happen unimaginable.
और मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि ये जो सारी बातें होने वाली हैं, ये तो कल्पना से बाहर है.
The earth is not going to perish by flood and water, but with fire and brimstone.
ये जो पृथ्वी है, ये तो पानी और जल के द्वारा नाश नहीं होगी, लेकिन आग और गंधरस के द्वारा नाश की जाएगी.
If we repent and get close to God,
अगर हम पश्चाताप करते हैं और अगर हम परमेश्वर के निकट आते हैं, उसके करीब आते हैं,
we can escape this destruction.
तो हम इस विनाश से बच सकते हैं.
We will be taken to glory when Jesus comes in power as a king.
और जब यीशु राजा के रूप में सामर्थ के साथ आएगा, तो उस समय हम महिमा में उठाए जाएंगे.
And he will also come as a judge to rule this earth.
और वो इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए एक न्यायाधीश के रूप में भी आएगा.
We all can join in one voice and shout, Maranatha, come soon, Lord Jesus Christ.
और हम सब एक साथ मिलकर चिल्ला सकते हैं, Maranatha, हमारे प्रभु यीशु जल्दी आ.
I do hope that you enjoyed thoroughly the exciting news and the messages that was given through this one little program. But next week we will see many more things.
और मैं आशा करती हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आपने बहुत सी नई बातें सीखी हैं, बहुत सी जानकारी पाई. अगले हफ्ते हम और एक नई बात को देखेंगे.
I hope to see all of you and please tell your friends to listen in. It is a very informative program.
और मैं आप सभी से मिलने की आशा करती हूँ. आप अपने सभी दोस्तों को बताइए इस प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि ये प्रोग्राम तो जानकारी से भरा हुआ प्रोग्राम है.
May God bless each and every one of you.
परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे.
Yom Shemeir, Hallelujah, Al Ma Shehayah.